आयत 121 तफसीर देखेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्वियुल मोमिनीन मकाइद लिल्किताल। और ए नबी, याद कीजिए वो वक्त जबकि सुबह सवेरे आप अपने घर वालों से निकले और मुसलमानों को जंग के मोर्चों पर मामूर कर रहे थे। कौन सा दिन है? गज़वे उहद की सुबह। रिवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे। और आप सब जानते होंगे कि अल्लाह के नबी को अपनी बीवियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी। पहली तोमल की बात इसमें ये लिखी है, अल्लाह के दीन के कामों के लिए सुबह सवेरे निकलना पड़ता है और प्यारों को घर छोड़ के आना पड़ता है। आप भी निकलते हैं, वो तो मैदान जंग में जाने के लिए निकलते थे ना। आज आप देखिए हमारे साथी, बल्कि जब तक ये तफसीर चलेगी ये जुमले रहने दीजिएगा ताकि बाद वालों को भी पता चले कि आज का हमारा ये सबक 15 दिन की छुट्टियों के बाद हो रहा है। आप खुद से पूछिए, क्या इन 15 दिनों में बेचैन थी? वो कौन सी सुबह होगी जब क्लास में पहुंचूं? कब 6 जनवरी आएगी और मैं अपनी क्लास में आऊंगी, या फिर आज आना मुश्किल लग रहा था? देखिए, इंसान का जिस्म बड़ा आराम तलब है, हो जाता है जब बहुत दिन बाद निकले तो। आज हो सकता है कि हल्की सी सुस्ती हो, नकाहत तो ये फितरी है, लेकिन क्या शौक था आने का? मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, अभी मैंने शुरू में थोड़ा सा आपसे जिक्र किया कि मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र का मौका मिला और बिल्कुल ही नए जगहों पे गई जहाँ कभी गई भी नहीं थी। कुछ पुरानी भी थी जगह, नई भी थी, और एक एक दिन में एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी हुए। लेकिन जब मैं फारिग बैठती थी ना रात को, या अकेले में या गाड़ी में, तो मैं तसव्वुर में सोचती थी कब मैं अपने इस क्लासरूम में यहाँ बैठ के आपको पढ़ाऊँगी। तो मुझे रश्क आता था। एक तो सफ़र की सौपतें आपको पता ही है, आप कहाँ चीज़ें किधर, बंदा अपनी जगह से मिसप्लेस ही हुआ होता है, वो तो खैर ऐसा बड़ा मसला नहीं था। लेकिन यह कि मेरे लिए इस जगह पे आना और आपको ये आज का सबक पढ़ाना, और मुझे पता था मैंने ये सबक पढ़ाना है, तो इतने दिन मैंने सबर किया कि ये जुमला वाइज गदउ तमिन अहलिका पढ़ाने में, कि अल्लाह तू हमें भी अपने लिए निकाल। हो सकता है जब आज आप सुबह निकले हों तो आपके शौहर अभी घरों में हों, आपके बच्चे भी घरों में हो, लेकिन ये निकलना बंदे को ईमान देता है। आप अगर अच्छी माएँ हैं ना तो अपने बच्चों को सुबह सवेरे अल्लाह के लिए निकालें। कब? फजर के लिए। और जो माँ अपने बच्चे को सुबह फजर के लिए नहीं उठा सकती, क्या कल जंग का मौका आया तो जंग के लिए निकालेगी? बात वाजे है। सबसे मुश्किल इंसान के नस पे जो काम है ना, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, फजर के लिए उठना। ये बड़ा एक अजीब कहानी होती है और इंसान इसके ऊपर गौर करे। मुझे इत्तेफाक हुआ इसी ट्रिप के अंदर बहुत सारे लोगों में से एक जगह जाने का, फजर का वक्त, नमाज का वक्त, घर के फरीकैन और जो भी साथी, जो भी उस वक्त काम हो रहा था, नमाज हुई जमात से, और उसके बाद घर का बच्चा बच्चा यानी बच्चे भी और माँ भी जो हैं पीछे, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं आपको ऐसी एक हल्की सी झलकी सुनाती हूँ। आपको एक से ज्यादा आवाजें आ रही होंगी पीछे। पीछे बैकग्राउंड में माँ की भी आवाज है। घर के अंदर से माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर से भी बचाए, इस तरह आवाजें आ रही थी जैसे कोई मदरसा है। हर बच्चा अपना अपना कुरान पढ़ रहा था, और मैंने इस फाइल को अपने पास सेव भी ऐसे किया कि मुस्लिम होम एट द टाइम ऑफ फजर। हम इसको डाल देंगे वेबसाइट पे, आप सुनिएगा। और दिल से दुआएं निकली कि जब माएँ और बाप अपने बच्चों को फजर के लिए उठाएंगे तो इंशाल्लाह, खुदा न खास्ता अगर कभी इस्लाम के लिए कोई हमला होता है दुश्मन का, तो निकालना पड़ा तो जंग के लिए भी निकलेंगे। और ये सिंबल है कि तुम फजर के लिए उठो ताकि कल कभी इस्लाम के दिफा के लिए, जंग के लिए निकलना पड़े तो मुश्किल ना लगे। आपको पता है कि फौजियों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं लोग? सुबह सुबह उठा देते हैं, सर्दियों में ठंडे पानी से नहलाओ, चलो बर्फ पे चलो, और गर्मियों में मोटी जैकेटें पहना के कहते हैं बाहर धूप में जाओ। सख्त जान करते हैं ना, ताकि मुश्किल में जब दुश्मन आए तो आपके, हाय मुझे तो सर्दी बड़ी लग रही है, गर्मी बड़ी लग रही है। ये आज की माओ को मेरा पैगाम है, कि अपने बच्चों को ऐशकोश ना करें। जब से हमने अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ का आदी कर दिया ना, हमारी फजरें भी गईं और हमारी नमाजें भी गईं। आप याद करें, एक वो वक्त था जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुए थे, बरेसगीर पाको हिंद। अगर आप में से किसी को कोई याद हो या किसी की माँ नानी ने सुनाया हो, हमने तो ये बात सुनी है सिर्फ दूसरों से। घर इकट्ठे थे, जैसे आज यहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम के घर इकट्ठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि पता कैसे चलता था कि ये मुस्लिम घराना है, ये हिंदू घराना है, ये सिख है, हर एक का फर्क था ना। तो जो बात हमारे बड़ों ने बताई कि जिस घर से सुबह उठते इस तरह कुरान की आवाजें आती थी, तो लोग समझते थे ये मुसलमान घराना है। कुछ घरों से सुबह भजन की आवाजें आती थी, क्योंकि हिंदुओं के भजन में भी मजहबी रंग है, वो मजहब के नाम पे भजन बजाते तो पता चलता था ये गाना बजाना ये हिंदू का घर है। हर मजहब ने किसी ने गाने रब के नाम पे गाने बनाकर रब को याद करना शुरू किया, लेकिन मुसलमान घराने की पहचान कुरान और नमाज थी। हमने तो खुद अपनी नानियों को देखा है, यही गम होता था कि हाय नाना नानी के घर जाएंगे तो इन्होंने सहरी के वक्त सारी लाइटें खोल देनी है, ये हमें सोने नहीं देते। फिर थोड़े बहुत आवाजें शुरू हो जाए, उठ जाओ नमाज हो रही है, उठ जाओ, फिर लाइटें जल गई, फिर रजाइयां खींच देनी। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन था ना तो हमें रोना आ रहा होता था छुट्टियों में जाते हुए, खुशी तो होती थी, लेकिन ये था कि नाना अबू ने सुबह फजर के बाद सोने नहीं देना। और आप देखे उस दिन की बरकत, आप एक सुबह ऐसी करके तो देखे। मैं कहती हूँ आप सब माएं, औरों को छोड़ दें, मेरे लिए अब किसी की इतनी अहमियत नहीं, लेकिन मेरे लिए आप सिस्टर्स अहम हैं जो हर वक्त कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ती हैं। फजर के वक्त घर कब्रिस्तान नहीं लगना चाहिए, किस्सा मुख्तसर, मुर्दों वाला घर ना हो, सब लाइटें खोलें, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको बरकत देगा। अगर बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आ गया कोई बात नहीं, सारे दिन में सेव करें, हीट बंद कर दें आज के दिनों में, एक अच्छी आवाज में तिलावत चला दें। आज तो हमारे घरों में हाथ में फोन है, आप एक इसके साथ सेट लगाए, एक ऐसी खूबसूरत आवाज में आप शुरू में तिलावत चला दें, पकाना शुरू कर दें अगर आपको लगता है कि बच्चों को खाने की खुशबू बेदार करती है। लेकिन हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि आप फजर के वक्त अपने घर का माहौल जिंदा करें। दुख की बात है कि बच्चे तो बच्चे हैं, अब माँ बाप भी नहीं उठते, और उससे भी ज्यादा एक हैरत की बात है जब कुछ माँ बाप या माएँ कहती हैं, हमसे तो वही मिलती हैं ज्यादा, कहती है मेरे बच्चे मुझे उठाते हैं कि अम्मी उठो नमाज पढ़ लो। कोई बच्ची है कि उसको नमाज की आदत है तो वो कहती है कि उठो और नमाज पढ़ लो। और आप देखिए, ये भी तो कही जा सकती थी ना कि अल्लाह के नबी जब गए जंग के लिए, गदऊ था, और गदूफ कहते हैं सुबह को, एएम्स, एक होता है ना पीएम और एक एएम, गदूफ का वक्त कहता है अर्ली मॉर्निंग, जिसको आप बिल्कुल इंग्लिश में एएम्स में कह लें, और सनराइज से पहले का वक्त है, और मिनाहली का घर वालों से। आप देखिए कि अपने छोड़ने पड़ते हैं। मैंने आपको भी जो कहानी सुनाई इसका मतलब ये नहीं था कि कोई मैं आपके ऊपर रोप डालूं, लेकिन यकीन करें जिस सोच के साथ लोग पाकिस्तान जाते हैं अपनों को मिलना, प्यारों को मिलना, सबको हिरस ही दे के आई हूं। इसलिए ये था कि, और कौन रोक सकता है, आप एक नो कह दें कि नहीं जी ये वेकेशन है, हम कहीं नहीं जा सकते। जहां जाती थी माँ को साथ ले जाती थी, जो भी अपने करीबी जिनको मुझे ताकि उनको अच्छा लगेगा मेरे साथ रहना, जहां जहां सफर किया वो हमारे साथ ही रहे, एक गाड़ी नहीं तो दो ले ली, कि चलो साथ भी रहो, अल्लाह का काम भी हो जाएगा, साथ मिल भी लेंगे, बैठे भी हैं रस्तों में बातें कर लेंगे। ये नहीं किसी दिन गफलत के साथ किया कि बस हम अब शादियां खा रहे हैं और मिल रहे हैं, और आखिरी दिन जो करीबी रिश्तेदारों को मिलने की नीयत की थी, अल्लाह जजादे भाई के साथ जाके सबको 10-10 मिनट मिल के भी आ गए, कुछ भी नहीं कमी हुई। ये होगा जब तक आप ये नहीं करेंगे कि अल्लाह के काम को आगे करके अपने काम को पीछे करें, तो फिर बात नहीं बनेगी। मोमिन को आराम की परवाह नहीं होती, अल्लाह के हुक्म के बाद बंदा उठता है, फिर हर चीज कुर्बान। अल्लाह के नबी ने दुआ दी थी, आप कहते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबहों में बरकत दे दे। बाकिरा कहते कुंवारी लड़की को, तो सुबह का वक्त जब उठ रहा होता है ना उसको भी बिक्र कहते हैं, यानी सुबह के वक्त जो लोग उठें तो अल्लाह ताला तो उनको बरकत दे। और आप इस आयत पे अमल करेंगे, मैं भी करूंगी, नियत करें, आज का दिन देख लीजिए 6 तारीख है, मंडे का दिन है, अगले संडे तक 1 वीक पूरा नियत करते हैं कि फजर के बाद नहीं सोना, फजर से पहले उठना है, और आप देखेंगे उस दिन की जो बरकत है। आप 10-11 बजे तक सारे काम कर लेते हैं और दिन ही इतना लंबा होता है, नहुसत कब पड़ती है जब 11 बजे सो सो के उठते हैं अंगड़ाइयां लेते हुए, और फिर 12 बजे तक चाय का कप होता है, और 1 बजे अखबार उठाते हैं, फिर उठते हैं तो कहते हैं लो दिन ही खत्म हो गया, बरकत ही नहीं। जिधर जाएंगे आप ठोकरे खाएंगे, वक्त नहीं मिलेगा, और एक दिन ऐसा करके देखें, घर की सफाइयां भी होंगी। और आज भी माशाल्लाह जहां अपने मुल्कों में आप देखें, इधर भी ये गोरे देख लीजिए, 4 बजे उठ जाते, इनको तो कहीं नहीं जाना होता। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे जब कभी मैं देखती थी, अमेरिका में आदत थी, तो जब हम अपनी गाड़ी गर्म कर रहे होते थे मस्जिद जाने के लिए, तो हमारे नेबर्स की भी गाड़ियां गर्म हो रही होती थी, कोई पढ़ने जा रहा है तो कोई जॉब के लिए जा रहा है। तो मेरी आंखों में आंसू आते थे कि हमें तो कुछ मिलना है इस वक्त, लेकिन ये दुनिया लेने के लिए निकल रहा है। तो इसीलिए वो कामयाब है, जल्दी उठते हैं जल्दी सोते हैं, हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, फिर कहते हैं उम्मत का हाल के दिन की बरकत तो खुद ही खत्म हो गई। कैन यू बिलीव 12-1 बजे तक रात को दुकानें खुली रहे और 11 बजे तक खुले ही ना। आप हम जैसे लोग जब अपने मुल्कों में जाते हैं, सबसे पहले फजर के बाद झगड़ा ही ये होता है कि अब करें क्या, घर वाले भी सो रहे हैं, बाहर का कोई काम नहीं कर सकते। ड्राइवर है उसको, भाई हमें ले जाओ, तो वो कहते हैं भाजी इधर तो 11-12 बजे दुकानें खुलती हैं, असल में 1-2 बजे के बाद। आधा दिन जाया हो जाता है और फिर हर बंदा शिकवा करता है कि जी इकोनॉमी डूब गई और गुर्बत बढ़ी और महंगाई बहुत है। तो जब उधर देखिए गजवे उहद में एक बात नबी की ना मान के शिकस्त हुई ना, उम्मत को नुकसान हुआ, तो आज वही उम्मत जब नबी की बातें नहीं मान रही तो कहाँ से खैर आएगी? फिर ये महंगाई होगी, बिजली जाएगी, गैस जाएगी, ये नसीब है हमारा, ये बदल सकता है एक दिन में। आज नियत कर ले पूरी उम्मत मुस्लिमा कि आज के बाद मैंने अल्लाह के नबी की कोई बात जानते बूझते नहीं छोड़नी। आप देखिएगा कि आपके मुल्कों में जो खैर और जो बरकत आएगी वो पूरी दुनिया उसके लिए तरसेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने दीन के लिए उठने और निकलने वाला बना दे। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगला जो अमल का नुक्ता है इसमें वो क्या है कि सुबह उठ भी गए, घर में बीवी को छोड़ा, प्यारों को छोड़ा, अल्लाह को कितना प्यार आया बंदे पे कि मेरा बंदा अपनों को छोड़कर मेरे लिए निकल पड़ा। लेकिन करना क्या है, बाज लोग उठ भी जाते हैं जाग भी जाते हैं लेकिन करने के काम के बैठ के टीवी खोल के बैठ गए, इधर का चैनल खोल उधर का चैनल खोल, इधर की बातें उधर की बातें। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, आप कर क्या रहे थे, असल चीज क्या कि करना क्या है। ठीक है सोना एक नहुसत है, लेकिन जाग के भी जब काम करेंगे तो बरकत होगी। और अल्लाह के नबी का उस दिन का काम क्या था कि आप अपने लोगों की जगहों को मुंतखिब कर रहे थे। तो तुबव्वियु कलब से आपके सामने अगर आप देखें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप सुबह सवेरे निकले और आप मोमिनों की सफे हमवार कर रहे थे। इस लफ्ज के नीचे लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा लीडर जो होता है ना ऑर्गेनाइज्ड होता है, जब तक आप अपने साथियों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे आपको कामयाबी नहीं होगी। और आप और मैं जब तक ऑर्गेनाइज होके यहाँ नहीं बैठेंगे काम नहीं होगा। पढ़ने के वक्त में अगर आप अपनी ड्यूटियां कर रहे होंगे मुझे बताइए कि आने का फायदा क्या। मिसाल है क्लास शुरू हो गई, रोल कॉल के वक्त में आप थे नहीं, ग्रुपिंग के वक्त में आप पहुंचे और आप कहते हैं कि अब मैं ये कर लूं। जिसकी जो ड्यूटी है अपने ऊपर लेके हर एक खुद सोच ले। मिसाल है आपको कैंटीन का काम दिया गया तो आप कहते हैं नहीं ग्रुपिंग छोड़ के कैंटीन का काम कर लूं, क्यों ये होटल है कोई, कैंटीन नहीं भी लगेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सबक नहीं सुनाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये जुमला नोट करिए, या जिस काम का जो वक्त है उसको करे, जिम्मेदार है ना, लोगों से 1 घंटा पहले आए, आधा घंटा पहले, फिर पता चलेगा इस गदाउ तमिना हलिका तुबव्विल मोमिनीन इसका मतलब क्या होता है। याद रखिए लीडर्स का अमल, जो बड़े लोग हैं, ग्रुप लीडर नहीं मौजूद स्टूडेंट्स के आने का क्या फायदा होगा, और आए हुए भी और वो किसी और काम में लगे हुए तो दूसरों को क्या देंगे। ये कुरान और हदीस और सीरत हमें सिखाती है कि कामयाब ग्रुप कौन से होते हैं। तो आज नियत कीजिए जिस वक्त का जो काम है उस वक्त करना है, नहीं तो नहीं करना, वरना एक तो आपने वो काम गलत किया फिर दूसरा भी गलत किया। हर इमरजेंसी के लिए तैयार रहा करें, हर काम के लिए रहे। और मकायद अलिल किताल, लड़ने के लिए जगह मामूर कर रहे थे, पता क्या चला कि जंग ही क्यों ना करनी पड़ जाए, प्लानिंग के साथ करो। इस्लाम बहुत ऑर्गेनाइज रिलीजन था, अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमान उतने डिसऑर्गेनाइज हो गए। इन मुल्कों में आके तो हम लाइनें बना लेते हैं, सफ़े बना लेते हैं, अपने मुल्कों में ज़रा देखा करें। सिर्फ वल्लाही मैं कोई बुराई नहीं करती, मुझे अपने मुल्क से इतना प्यार है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह के बाद अल्लाह रसूल दीन के बाद जो मोहब्बत है तो वो अपने मुल्क से। और मैं इस दफ़ा इत्तफाक देखिए कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे पिछले इतने सालों में जब से मैं बाहर से आती जाती हूँ, फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद लैंडिंग हुई हमारी, क्योंकि हमेशा कराची लाहौर था, इस दफ़ा ऐसे था। और लफ्ज़ इस्लामाबाद के साथ खुद ही पता नहीं क्यों पाकिस्तान और वो कैपिटल आता है, बाहर नज़र पड़ी तो जहाज़ के ऊपर झंडा भी पाकिस्तान का था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा अल्लाह हमारा इतना प्यारा मुल्क है तो इसकी हिफाजत करना। अल्लाह इसको अच्छा रखना, अल्लाह तूने दिया, जो जो नीचे जमीनें दिखती हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह इतना तो प्यारा है, हमने भी गाड़ा हुआ है तो बड़ा प्यारा, आज भी खूबसूरत है, तभी तो लोगों की नजरों में खटकता है। तो हम सब अगर प्लानिंग करेंगे ना तो हमारे काम ठीक होंगे। और आप यकीन करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील में जब आप इस वाक्य को, इतने लोग इधर, ये मैमना, ये मई सरा, इधर ये मुसब बिन उमैर है, इधर जुबैर बिन अवाम है, इधर हमजा, इनको ये, तुमने तीर तलवारें चलाने के इंचार्ज हो, तुम उसके हो, हमारा आज हाल क्या है। जब हम निकले जो मंजर जो सिर्फ अपनी वो इमिग्रेशन पे था ना, कि ना गुफ्ता बे, शायद एक से ज्यादा फ्लाइटें थी, या वल्लाहु आलम क्या था, पीछे जहाज पे इतने सफर करने के बाद लोगों का और हमारा, मेरा हाल मैदान महशर याद आ गया हमें, अनयूजुअल किस्म का रास्ता और अनयूजुअल किस्म की डिसऑर्गेनाइजेशन थी, कि वहां बीच में कुछ गोरे अंदर से निकले एक जगह, तो वो देख रहे व्हाट्स हैपनिंग हेयर, और मेरा सर शर्म से पानी पानी था। मैं वहां बैठी, एक छोटा सा हॉल है और उसके अंदर वो इमिग्रेशन लोगों के पासपोर्ट कंट्रोल कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज करना क्या मुश्किल है, कोई लाइन नहीं, लाइनें लिखी हुई ऊपर सारी हैं, खड़े लोग अपनी मर्जी से हैं, एक काउंटर के आगे एक लाइन होगी तो बात बनेगी, आप एक काउंटर के आगे जब छह बंदे खड़े हो जाते हैं अपनी मर्जी से, वो छह लाइनें बन जाती हैं, और सबसे पहले हम निकले हुए थे और हमारे बाद जो आए सब चले गए, शायद आखिर में हमारी बारी, शायद 1 घंटे 1.5 से ज्यादा हम वहां खड़े रहे, और शिद्दत की गर्मी लग रही थी इतनी सर्दी के बावजूद। तो मैंने कहा इतनी सी जगह को ऑर्गेनाइज करना क्या मुश्किल है, 10 लोग हायर कर लें, एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है। तो याद रखिए कि प्लानिंग बहुत जरूरी है, आप दीन का काम करें, दुनिया का काम करें, मुल्क का काम करें, जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। आपने अगर पढ़ना है ना तो अल्लाह के नबी की जिंदगी पे एक किताब है, टॉम वंडर नाम का शख्स है, लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम पे इंग्लिश की बुक है, उसने नबी सल्लम की जंगी जो स्टेटिस्टिक्स थी ना और आपकी जो स्ट्रेटेजीज थी, सिर्फ उसके ऊपर बात करके बताया कि ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल जर्नल। ऐसे थोड़ी ये काम होते हैं जैसे हम करते हैं, काम थोड़ा और शोर ज्यादा, अल्लाह के नबी सल्लम की प्लानिंग थी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी प्लानिंग करने वाला बना दे और प्लानिंग के ऊपर फिर अमल भी करें। हम जब चीज सर पे पड़ जाती है ना तो फिर भागे दौड़े लगा, फिर दौड़े देखे कोई हमारी, खुद भी गिरते हैं साथ की चीजों को भी गिराते हैं, ये और ही तकलीफ की बात होती है। नहीं किया ना काम, अब सुकून में बैठे, आपकी घबराहटों से दूसरों को तो कम अज कम जहनी तौर पर परेशानी ना हो। खैर ये बात अब अमल की थी तो इस पर बात तो हो गई, अब क्या होता है उसके बाद, ये सब कुछ हुआ, मुकामे शौत पे पहुंच गए, 300 लोग अलग हो गए, इन 300 को अलग होता देखकर कुछ मामलात कच्चे पड़े, पीछे बात हो गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, ये सारे काम जो भी करते थे नबी सल्लम के साथ, उनको इस बात का पूरा यकीन था, और वो क्या थी कि वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनता भी है और जानता भी है। आपको जब भी अल्लाह के रास्ते का कोई काम मुश्किल लगे ना तो इस बात को याद रख ले कि अल्लाह सुनता और जानता है। इंसान की तबीयत में ये बात होती है कि मैं नेकी का कोई काम करूँ ना तो किसी को पता लग जाए, बस कोई जान ले, कोई मेरे ये मार के सुन ले, तो कहा समी और अलीम को सुना दो। यहाँ उन सहाबा की तारीफ है कि जो सिर्फ अल्लाह को दिखाने और अल्लाह को सुनाने के लिए काम करते थे, दूसरों के लिए नहीं। फिर क्या हुआ, आयत 122, इस हम्मत इफतानी मिन कुमन दफशला, जबकि इरादा किया तुम में से दो गिरोहों ने ये के बुजदिली दिखाए। हम्मत लफ्ज क्या है, इसका रूट क्या होगा, हा मीम मीम जी शाबाश, ता जो है मुअन्नस की है, ताइफतान जो है ताइफतुन का तस्निया है, दो गिरोह, हा मीम मीम हम क्या कहते हैं, सोच विचार करना, जब कोई इरादा कुछ देर दिल में रहे फिर सोचें करूं कि ना करूं, जिसका आप कहते हैं ना डबल माइंडेड होना या सोच में पड़ जाना, उसको हम कहते हैं। तफशला का रूट देखिए, फा शीन लाम है, फशला बुजदिली करना, बुजदिली दिखाना, यानी बुजदिल कैसे होता है, बंदा मादी तौर पे भी कमजोर हो जाता है, कभी साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है, यानी कुछ ग्रुप जो होते हैं वो वीक होने लगे, ठीक है। तो यहाँ इशारा है वही जो आपको बता दिया बनु सलमा और बनु हारिसा ग्रुप की तरफ, कि जब अब्दुल्ला बिन उबई साथ 300 लोगों को लेके निकला तो कुछ दो गिरोहों ने भी इरादा कर लिया कि बुजदिली दिखाए, लेकिन वल्लाहु वलीयुहुमा, हालांकि अल्लाह इनका वली था, अल्लाह इनका दोस्त था। अल्लाह ने अपनी दोस्ती का हक कैसे अदा किया, किसी को पीछे की एक आयत याद आई, सूरत बकरा में आयतुल कुर्सी के बाद अल्लाहु वलीयुल्लज़ीन आमनू युख्रिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाती इलन नूर। ये दोनों कबीले के लोग जो थे ये बात में बहुत फख्र किया करते थे, कहते थे कि बेशक इसमें हमारी सुस्ती और बुजदिली का तذکرہ हुआ है, हम्मत ताइफतानी अंतफशला, कि हम सुस्त हो गए थे लेकिन हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसके बाद हमें वो अल्लाहु वलीयुहुमा कहा है, कि अल्लाह फिर भी स्टिल उनका दोस्त था। वालल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और चाहिए कि अल्लाह ही पर तवक्कुल करे ईमान वाले। यहां भी अमल की बहुत खूबसूरत बात है, और वो क्या है कि अल्लाह के रास्ते में बाज दफा मुखलिस लोग भी ढीले पड़ जाते हैं। इंसान है ना, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी ईमान का लेवल ऊपर, कभी नीचे, इट्स नेचुरल। लेकिन अल्लाह की सुन्नत क्या है कि अल्लाह जिसका दिल अच्छा होता है उसको पलटने नहीं देता। बस आप देखिए कि हमने तो इस्लाम को बचपन से ही देखा है ना, कबूल नहीं किया, बस हो गया बचपन से। हमारे ऊपर तो ये मोड़ कम ही आते होंगे, लेकिन कई दफा अपने ही दीन के बारे में कुछ ना कुछ ख्यालात आ सकते हैं, कभी कुछ शक, कभी पता नहीं इस्लाम ठीक है कि नहीं, पता नहीं, ये ख्याल आ सकते हैं। लेकिन अल्लाह की सुन्नत क्या है, वही बंदा पलटता है जिसका दिल खोटा होता है। सच्चे दिल वाले को अल्लाह कभी पलटाता नहीं है। यह देखिए अब्दुल्ला बिन उबई भी तो निकला ना 300 को लेकर, अल्लाह ने उनको क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो दिल का रोगी था, वो दिल से आपके साथ नहीं था, उसका मोटिव भी कोई और था मैदाने जंग में निकलने का। वो तो माले गनीमत लेने गया, बाद में लगा यहाँ तो मौत यकीनी है, माले गनीमत क्या मिलना है, मरमरा जाएंगे, चलो चलते हैं। मुनाफिक हमेशा अपने फायदों के लिए इस्लाम देखता है, और मोमिन हमेशा कुर्बानी के लिए आता है। मोमिन कहते हैं मैं क्या दूं अल्लाह को, मुनाफिक कहते हैं मैं क्या लूं अल्लाह से। यही हुआ, ये सच्चे लोग थे, मुखलिस थे, साथी थे, अल्लाह ने इनको जमा दिया। तो इससे हमारे लिए एक बड़ी ज्यादा तस्कीन की बात है कि अगर कभी खुदा न खास्ता दीन के काम करते हुए कहीं हिम्मत टूटे, आप ये कोर्स कर रहे हैं, हो सकता है तफशिला हो जाए, कभी छुट्टियों के बाद आना ही कुछ लोगों को मुश्किल लग जाए, आपके अपने दोस्तों साथियों में हो सकता है कुछ ढीले पड़े हो, जाइए फटाफट जाके उनको बुला लें। वही काम कीजिए जो सहाबा ने बनु सलमा और हारिसा के साथ किया था, और यही मोमिन का काम है, वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र, एक दूसरे को थामते रहो। इसी सूरत की आखिरी आयत में हम पढ़ेंगे इस बिरु वसा बिरु वरा बि तु वत्तकुल्लाहुम तुफलेहून, के मुसलमानों खुद भी जमो और अपने दूसरे साथियों को भी जमाया करो। खुद फजर के लिए निकलते हो, हमसाए की भी वेल कर दो कि आपको भी जाना है। देखिए हमने शॉपिंग करनी है ना, चार दोस्तों को पूछते जाना, मैं उधर जा रही हूँ लेने, वहाँ सेल लगी है तुम लो की, वहाँ सस्ता मिल रहा है लेती हूँ। तो जिनको नेकियों का अजर होता है दिल में, वो फिर नेकियों की बात करते हैं। तो मोमिन अकेला नहीं रह सकता, जब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मामला करेगा अल्लाह सुबहाना ताला फिर उसकी मदद करेगा। लिहाजा